नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया जागृति जी।
कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सचिन सर्जराव ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट F46 वर्ग में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम विश्व कप के फाइनल में पुरुष टीम कांस्य पदक से चूकी। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में आज अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। और FIH प्रो लीग यूरोपीय चरण के पहले मैच में भारतीय पुरुष टीम ने अर्जेंटीना को हराया। जी, और शुरुआत करेंगे जीत के साथ, और ये जीत बहुत मायने रखती है, लोगों के उत्साह को बढ़ाती है, मनोबल को बढ़ाती है। भारत के सचिन सर्जराव ने जापान में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉटपुट F46 वर्ग में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, और भारत ने टूर्नामेंट में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करके दिखाया है। तो इस जीत के क्या मायने हैं?
बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्री है, क्योंकि आपकी पेरिस ओलंपिक्स आ रहे हैं और सचिन जी ने अपना खुद का ही जो पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड एशियन रिकॉर्ड था, हाँ वो था लास्ट ईयर जब वर्ल्ड एथलेटिक्स में उनका 1621 था, उसके मार्च बेटर करके आगे बढ़े हैं। क्वालिफिकेशन मिला है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, बोले भी है कि हम गोल्ड जीतने के लिए वहां पे दावेदार है। और देखिए, पूरी सोसाइटल स्ट्रक्चर में जो हमेशा बार बार कहता रहता हूं कि सोसाइटी इंडिया में स्पोर्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी एंड स्पोर्ट्स इतने ज्यादा रिसेंट ईयर्स में हुए हैं कि आप कुछ साल पहले तक आप देखेंगे तो पैरालंपिक्स में हम लोग जाते थे, कुछ पार्टिसिपेट करके आ जाते थे, आज वहां से हम लोग को मेडल मिलते हैं, और सिर्फ एक नहीं, तुक्के पे नहीं, हम लोग दावेदार होके जाते हैं। और ये पेरिस ओलंपिक से पहले जस्ट ये सब ऐसे परफॉर्मेंस मोटिवेशन बढ़ाएगा, कमिटमेंट बढ़ाएगा एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा ईज होगा। मैम,
बिल्कुल। धर्मवीर ने पुरुषों के क्लब थ्रो F51 वर्ग में कांस्य पदक जीता, जिससे भारत के पदकों की संख्या 12 हो गई है। पदक तालिका में भारत 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो आपने अभी बात कही थी कि एक्सपेक्टेशंस इससे बढ़ती हैं, तो इससे पहले कहीं न कहीं जो खेलों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं या फिर और तमाम तरह की जो सपोर्टिव स्टाफ होता है या सपोर्टिव जो फैसिलिटीज हैं, कहीं न कहीं उसको लेकर कोई कमी रही होगी। और खिलाड़ियों का जो मनोबल है, एक तो उनके लिए फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ जो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए होता है कि आसपास की जो सोसाइटी है, जो अथॉरिटी है, वो कितना उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें इस पूरे जो सिस्टम का योगदान आपको लगता है कि पहले से बेहतर हुआ है?
विदाउट एनी डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स बताते हैं। लोग अग्री करे ना करे, इवेंचुअली आपका रिजल्ट्स क्या है, आपका मार्कशीट में क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है कि आपकी रिजल्ट सामने है। और ये सिर्फ जो मैं पहले बोल रहा था, तुक्के में नहीं, आप हंगझोउ एशियन गेम्स में देखिए, वहां पे भी हम लोग अच्छे किए। पहले आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप देखिए, वहां पे हर कोई डिसिप्लिन पे हम इतनी मेडलिस्ट दिए है, और पूरी मोटिवेशन और एक सोसाइटी पूरी एम्ब्रेस किए पैरा एथलीट्स को, जो पहले ऐसे कभी नहीं होता था। तो उस हिसाब से कि लोग जानते हैं, ठीक है, आज के पार्ट में स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल एरिना में ऑल डिसिप्लिन में हम जाके परफॉर्म करते हैं, और पैरा एथलीट्स को इतनी सुविधा, इतना एक्सपोजर और इतना सपोर्ट मिलने के कारण ही देश आगे जा रहे हैं, खास करके स्पोर्टिंग वर्ल्ड पे। मैं मानता हूं कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं है पहले, बट मैं मार्कशीट को देखना पसंद करता हूं, पहले क्या था अभी क्या है।
बिल्कुल, आपने कहा कि पहले जाते थे पार्टिसिपेट करके चले आते थे, लेकिन अभी पता चलता है कि किसी चैंपियनशिप में भारत का दल जा रहा है और वहां से हम तमगे लेकर आते हैं, गोल्ड लाते हैं, ब्रोंज लाते हैं और सिल्वर लेकर आते हैं। और अगर इस बात चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है 12 पदकों के साथ, चीन पहले और ब्राजील इसमें दूसरे स्थान पर है। दुनिया के नंबर एक भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम दक्षिण कोरिया में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। हालांकि पुरुष कंपाउंड टीम दूसरे चरण में कांस्य पदक से चूक गई है। तो अभी भारतीय महिला जो तीरंदाजी टीम है वो पहुंच चुकी है फाइनल में, यानी कि गोल्ड हमारा है कहीं न कहीं पक्का।
पक्का तो नहीं बोल सकते, इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल है। टर्की को फाइनल पे हम लोग खेलेंगे और टर्की शायद जितना मेमोरी बोल रहा है सेवेंथ रैंक्ड है, और साउथ कोरिया को, कोरिया रिपब्लिक को, हाँ वो कोरिया रिपब्लिक को तीरंदाजी में कोरिया में हराना बहुत ह्यूज अचीवमेंट है। तो उस हिसाब से यहां पे देखिए आर्चरी में एक पॉइंट का इधर उधर से आपका आर्चरी शूटिंग तो 0.5 का भी 0.1 का भी हो जाता है, आर्चरी में एक पॉइंट का आपका इधर उधर आपका गोल्ड मेडल चला जाता है। मैं खास करके बिगर फ्रेम पे जाना चाहूंगा क्योंकि ये हर कोई चैंपियनशिप और हर कोई जो स्पोर्ट चल रहा है एक्सपोजर टूर, अभी यदि एक्सपोजर माने हम तो ये वर्ल्ड कप आपकी ओलंपिक्स की तरफ हम लोग का एक्सपेक्टेशंस अगेन बढ़ाता है। और प्रायर टू दी ओलंपिक्स हम लोग का तीरंदाजी टीम ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा करके गया है। हम यही चाहेंगे कि जो यहां का एक्सपेक्टेशंस और यहां का परफॉर्मेंस है इट्स कैरिड फॉरवर्ड टू दी ओलंपिक्स। ना जीतने का गोल्ड ना जीतने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हाँ हम ऑलरेडी जीत गए हैं, क्योंकि देखिए स्पोर्टिंग वर्ल्ड कितना बदल रहा है। आप यूएसए से हम लोग हार रहे हैं तीरंदाजी में, बहुत मीन्स अनथिंकेबल है। और सबसे बड़ी चीज साउथ कोरिया को, कोरिया रिपब्लिक नॉट साउथ कोरिया, कोरिया रिपब्लिक को टर्की लेडीज टीम जाके कोरिया में हरा रहे। तो आज के दिन पे कोई इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एरिना में फेवरेट्स नहीं है, बट हाँ उम्मीदें तो बिल्कुल है
जी। विश्व कप के दूसरे चरण में महिला टीम की तिकड़ी यानी ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने दुनिया की चौथे नंबर की टीम अमरीका को सेमीफाइनल में 229 के मुकाबले 233 रन से 33 अंकों से हराया। उन्होंने शंघाई में पिछले महीने पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय दल पहले चरण में 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदकों के साथ चैंपियन टीम के रूप में उभरा था। यह तीरंदाजी विश्व कप के किसी एक संस्करण में भारत की सर्वोत्तम पदक तालिका थी। तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण रविवार को समाप्त होगा। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का तीसरा चरण तुर्की के अंतालिया में और अंतिम चरण मेक्सिको के क्लास काला में आयोजित किया जाएगा। और अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे एलिमिनेटर मैच में अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला चल रहा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया है। और अगर अभी हम बात करें तो ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने खेल लिए हैं 13 ओवर और 14वें ओवर की अंतिम बॉल भी फेंकी जा चुकी है। 6 बॉल पूरी हो गई हैं, यानी कि 14 ओवर में राजस्थान इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर हो गया है 116 और विकेट हैं उनके 4। अभी इस कंडीशन में क्या लगता है, क्योंकि इधर राजस्थान ने टॉस जीता लेकिन गेंदबाजी को चुना और अभी बेंगलुरु की जो स्थिति है स्कोर कहां तक जाने की उम्मीद है?
स्कोर 200 क्रॉस नहीं होगा, 180 इस हालत पे 180 या 185 से ज्यादा उम्मीद नहीं होता, बट आईपीएल में कभी कभार लास्ट दो ओवर में 50 40 45 हो जाता है। 4 विकेट गवा बैठे कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल, अगेन ग्लेन मैक्सवेल पहली बॉल में ही आउट हुए थे आज आने के बाद ही। हाँ बहुत ही हाईली रेटेड प्लेयर होते हैं लेकिन कभी बिग मैच पे उतना आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाए। खास करके रविचंद्रन अश्विन और ट्रेंट बोल्ट जिस हिसाब से बॉलिंग किए, जो स्टार्ट मिलना था और स्टार्ट के बाद जो बिल्डअप होना था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वो नहीं हो पाए कर पाए। विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी शुरू तो अच्छी किए थे लेकिन कभी एक को एक शिप को एक तरीके से एंकर कर लेते तो शायद शिप और थोड़ा अच्छा स्टेडी हो जाते,
यहां पर स्कोर और बेहतर होता,
स्कोर ऑब्वियसली बेहतर होता। मेरे हिसाब से 170 175 मे बी 180 बट यू नेवर नो। रजत पाटीदार जो कि अभी पूरी सेट है, बहुत क्रूशल एक प्लेयर है आज की पूरी इस मैच पे, खास करके बेंगलुरु की तरफ से आरसीबी की तरफ से।
170 का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 170 में आपको लगता है सेफ स्कोर रहेगा जीत के लिहाज से? राजस्थान ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए या फिर राजस्थान रॉयल्स की कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी का अभी हम देख रहे हैं उनका जो प्रदर्शन है उसके बाद फिर बल्लेबाजों को भी देखना है, तो ऐसे में 170 लगता है, इज इट ओके?
देखिए मेरे हिसाब से 170 ये नहीं कि 170 बन गया है या ज्यादा भी बन सकते हैं। देखिए ये क्रिकेट मैच पे ऑन द सर्फेस 170 अच्छा मीन्स ठीक स्कोर नहीं लगता, सफिशियंट नहीं लगता ऑन द सर्फेस, बट हम ये ना बोले ये एक नॉकआउट मैच है। लीग मैच और एक नॉकआउट मैच में बहुत सारे अंतर होता है। लीग मैच में आपको 14 मैचेस आपको लगातार खेलने को मिलेगा, एक मैच आप फेल करें तो आपको और एक चांस और एक चांस और एक चांस, हफ्ते में आप 3 मैच खेल रहे हो, लेकिन यहां पे डू और डाई मैच होता है। और खास करके जो बोलिंग स्पिरिट आप राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिखाए है और जो फॉर्म पिछले बार मीन्स कुछ मैचेस पे लगातार लेके आए हैं, उस हिसाब से यदि अर्ली विकेट मिल जाता है तो किसी को पता नहीं। आई बिलीव और एक विकेट गिरी है मैम,
5वां विकेट जी बिल्कुल, रजत पाटी दार पवेलियन की ओर लौट रहे हैं 34 रन बनाकर। तो इस तरह से आरसीबी का स्कोर 122 5 विकेट के नुकसान पर हो गया है। और आपको बता दें कि इस मैच का विजेता शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेगा, फाइनल रविवार को खेला जाएगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हैदराबाद के 160 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता ने 13 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट पर 164 रन बनाकर मैच को आसानी से जीत लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 24 गेंदों पर 58 रन और वेंकटेश अय्यर 28 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद रहे। एफआईएच प्रो लीग यूरोपीय चरण में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के मुकाबले आज से बेल्जियम के एंटवर्प में शुरू हुए। भारतीय पुरुष टीम ने अर्जेंटीना को शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबरी पर थीं। तो इधर भारतीय टीम जो है जीती है पुरुष टीम, लेकिन महिला टीम हार गई है अर्जेंटीना से। दोनों के मुकाबले आज ही हुए लेकिन प्रदर्शन, क्योंकि 5-0 से हारी है महिला टीम।
हाँ, थोड़ी वन साइडेड हो गया है। पॉजिटिव साइन हम उनमें देखे कि शूटआउट में मेंस टीम जीता है। शूटआउट में हम कभी आज के रिसेंट टाइम्स में कुछ क्रूशल मैचेस में फॉल्टर किए थे, ऐसे नहीं कि रोज ही हम फॉल्टर करते रहते हैं, लेकिन यूरोपियन लीग में आपका एफआईएच प्रो लीग में यूरोपियन लीग का पहला मैच था अर्जेंटीना के साथ, तो उस हिसाब से वहां पे कॉन्फिडेंस टीम को ज्यादा बढ़ेगा। एंड अगेन द बिग क्वेश्चन, जो बिग हम लोग का जो मकसद है और जो बिग टारगेट कि इस बार जिस डोमिनेशन से हम एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आए थे हॉकी खास करके मेंस पे, उस हिसाब से दावेदार तो हम लोग है ही कोई एक मेडल पे। और मैं हमेशा हॉकी एक सेंटिमेंटल स्पोर्ट हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट फैन, मेरा तो उम्मीद हमेशा टिकी है। और इस जैसे मैच और एक्सपोजर टीम को गठबंधन के लिए और भी मजबूत करने के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूट करेंगे।
जी बिल्कुल, भारत की ओर से मनदीप सिंह और ललित उपाध्याय ने एक एक गोल किया। अर्जेंटीना की ओर से मार्टिनेज क्लुकास और डोमिनिक थॉमस ने भी एक एक गोल किया। हालांकि हमने आपको बताया कि भारतीय महिला टीम की शुरुआत निराशाजनक रही है और टीम अपने पहले मैच में ही अर्जेंटीना से 5-0 से हार गई है। हालांकि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की तरफ से एक अच्छी खबर है, टीम ने नीदरलैंड्स के क्लब ब्रडेज हॉकी वेरेनिगिंग पुश पर 2-0 की जीत के साथ अपने यूरोप दौरे की अच्छी शुरुआत की है। हिना बानो और कनिका सिवाच ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किरण जॉर्ज, पीवी सिंधु, अस्मिता चालिहा सिंगल्स के अगले दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने जापान के ताकुमा ओबायाशी को 21-16, 21-17 से हराया। महिला सिंगल्स में सिंधु ने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को 21-17, 21-16 से, चालिहा ने एसलिन को 21-16, 21-17 से हराया। वहीं आकर्षी कश्यप और उन्नति हुड्डा अपने मुकाबले हार गईं। पुरुष डबल्स में एस प्रतीक और केपी गर्गा की जोड़ी ने एमसी लू और तांग काईवे को 23-21, 21-11 से पराजित किया। वहीं मिक्स डबल्स में भी बीएस रेड्डी और एन रेड्डी ने जीत के साथ अपने दौरे की शुरुआत की है। तो अब इस पर एक छोटी सी टिप्पणी,
पीवी सिंधु उबर कप और थाईलैंड ओपन पार्टिसिपेट ना करने के बाद सिंगापुर ओपन 2022 में लास्ट जीते थे, ओलंपिक्स के लिए कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। नीलांजन, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
शुक्रिया
और आप सभी को नमस्कार।